वो कोई संदेश दे सकती है। देह की अमरता हमें मालूम पड़ती है, इसलिए देह के सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन देह की क्षुद्रता मालूम पड़ जाए और अपने आत्मा की अमरता मालूम पड़ जाए तो कौन ऐसा होगा जो देह की छोटी छोटी सी बातों के पीछे अपना पूरा संसार बनाए और प्रपंच खड़ा करे। एक व्यक्ति चला जाता था रास्ते से, एक्सीडेंट हुआ उसका कार से, मरा नहीं लेकिन सारा शरीर टूट फूट गया, पूरे शरीर में पट्टियां बंध गई। उसका एक मित्र मिल आया हॉस्पिटल में, जाते हैं लोग मिलने के लिए, वैसे को जिंदगी में भले में नहीं आए हो लेकिन ऐसे मौके पर तो जाना ही पड़ता है। तो वो गया उनसे मिलने और कहा कि क्यों कैसा लगता है, तकलीफ तो होती होगी। बोले हाँ थोड़ी होती, वरना इलाज संपूर्ण नहीं फील, जब कभी थोड़ा सा हंसी आती है तब तो थोड़ा पेन होता, थोड़ा तकलीफ होती। अजीब आदमी है, जब जो हंसी आती है तब तकलीफ होती है, तो इसमें तो हंसने का कोई मौका नहीं है, इतनी पीड़ा से गुजर रहे हो, सिर्फ आंखें दिखाई पड़ रही है, बाकी सब में पट्टी बंधी हुई है, फिर भी हंस लेते हो। उसने कहा अब नहीं हंसूंगा तो इसका मतलब मैंने हंसने का महत्व ही नहीं जाना, मैं तो सोचता था कि इसके टूट फूट जाने से मैं टूट फूट जाऊंगा, लेकिन इसके टूटने के बाद अब जब लोग मेरे से पूछते हैं कैसे हो तो कहता हूं ठीक हूं, जो टूट सकता था वो ही टूटा है, मैं तो बिल्कुल जो कहता हूं मैं नहीं टूटा, मुझे अपनी आत्मा की अमरता का बोध हुआ है, मुझे इस देह की निश्वरता का बोध हुआ है। क्या ऐसे कोई क्षण हमारे जीवन में आएंगे जबकि हम ये गीता से संदेश लेंगे? पूरा संदेश इस विराट रूप दिखाने का क्यों आवश्यक पड़ा श्री कृष्ण को? अपना अतीत, अपना अनागत, अपना वर्तमान सब तुम्हारे ही भीतर समाया हुआ है। और क्यों कहना पड़ा कि मां एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज, तुम एक अपने आप की शरण ले लो, सारी शरण को छोड़ दो, स्वधर्मे अपने स्वधर्म को प्राप्त कर लो। गीता का युद्ध बहुत बाहरी युद्ध नहीं था, वो बहुत भीतर की लड़ाई थी। गांधी जी को और विनोबा जी को, दोनों को गीताई और गीता बोध में यही बात उन्होंने कहना पड़ी कही कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का युद्ध वो वहां उस समय घटित हुआ होगा, लेकिन इदम शरीरम कौंतेय कुरुक्षेत्रम, क्षेत्रम इदम शरीरम, ये क्षेत्र अगर कोई है तो ये शरीर ही क्षेत्र है, और इस शरीर में कोई ना कोई लड़ाई हमेशा चलती रहती है। जब करो करो की आवाज आती है तब कुरुक्षेत्र हो जाता है, जब धारण करो की बात आती है तो वही धर्म क्षेत्र हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधुस्वा मान कहा पांडु पुत्रा किम करो थी संजया। संजय पूछते हैं धृतराष्ट्र, उनकी भी दोनों आंखें गायब हो गई हैं इसी मोह की वजह से, इस लड़ाई की वजह से। कोई बहुत बाहर की लड़ाई नहीं है, आज भी वो प्रासंगिक है वो लड़ाई हमारे भीतर, कोई ना कोई लड़ाई, और किसकी? तेरे मेरे की लड़ाई, अपने पराये की लड़ाई, राग द्वेष की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, हम अपने इसी शरीर के भीतर लड़ते चले जा रहे हैं, इसी शरीर को कुरुक्षेत्र बनाते हैं, थोड़ा कभी जागृत होते हैं तो धर्म क्षेत्र हो जाता। और युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए नाम का मेरे और पांडव के कितने कैसे अलग अलग हो गए, एक ही तो थे सब, लेकिन नाम का बस इस शब्द ने ही तो सारी लड़ाई शुरू कर दी। जहां मेरा और पराया, जहां राग और द्वेष हुआ वहां से युद्ध चालू, वहां से महाभारत की शुरुआत वहां से हो जाती। हमारे जीवन में रोज ऐसा महाभारत हम घटित कर लेते हैं, अपने पराये तेरे और मेरे के भेद से गीता संदेश देती है कि इस शरीर के भी भीतर जो रखी बैठा हुआ है, इस शरीर को तो साधन बनाना, इसकी क्षुद्रता को जानना, ताकि भीतर के उस आत्म स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को पहचान सको और उसे प्राप्त कर सको जो कि शाश्वत है। वो तुम्हारा स्वधर्म है, आत्म प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म ही विकर्म है, नियत कर्म है, पुण्य कर्म है, यह कि वही स्वधर्म है। ये बात बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से गीता में कही गई। हर धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए, धर्म ग्रंथ तो सब एक ही हैं, संप्रदायों के ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं। जहां धर्म की बात आएगी, वहां तो सूरज की रोशनी की तरह सबके लिए होगा। ये बात जुड़ी है कि आपके कमरे का सूरज का प्रकाश अलग हो सकता है, दूसरे के कमरे का दूसरा हो सकता है, पर जो सूरज का प्रकाश है वो तो एक ही संदेश देता है, जागो और अपनी यात्रा शुरू करो। अपने जीवन में तुम भी वैसे ही एनलाइटेड हो सकते हो, वैसे ही प्रकाशवान हो सकते हो, उस अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानो। गीता का ये संदेश अगर हम चाहें तो आज भी ले सकते हैं। गीता में तीन योग कहे हैं, तीन ही योग हैं, ऐसा नहीं है, गीता में कई योग हैं। विषाद योग से लेकर के प्रसाद योग तक की चर्चा की गीता में। जहां जहां श्री कृष्ण लेकर के खड़े हुए हैं रथ को दानों के बीच, और अर्जुन मुश्किल में पड़े हैं, कैसे लड़ूं ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई तो मैं सोचता था बहुत बाहरी होगी, पर ये तो लड़ाई अपने भीतर की है। अपनों से लड़ना है, अपने मुंह से लड़ना है। मुंह नहीं होता तो क्या दिक्कत थी लड़ने में। उस समय विषाद से घिर गए थे, लेकिन पूरा उपदेश शुरू हुआ और उपदेश के दौरान अंत में जाकर इसीलिए पूछना पड़ा श्री कृष्ण को कि अर्जुन गाय हुआ तुम्हारा मुंह की नहीं है। बोले हां भगवान। स्वधर्म याद आया कि नहीं आया भगवान? जब तक मोह था तब तक स्वधर्म भूला हुआ था। जिस दिन मोह हटा, मोह महानद पियो अनादि भूरी आपको भ्रमत भारी, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इस मोह की वजह से विषाद उत्पन्न हुआ और वहां से शुरुआत हुई। उस मोह के अभाव पर जब स्वधर्म की याद आई, तब जीत किसकी होती है? जीत तो जो मोह को जीत लेता है उसी की जीत होती है, और वही भगवान का प्रसाद है। इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? मैं तो सोचता हूं कि वहां से शुरू हुआ और अंत में प्रसाद योग तक बात गई कि हमने अपने को पा लिया, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है। और योग जो शब्द आता है बहुत आसान शब्द है भैया, योग कोई कठिन शब्द नहीं। योग है कर्मसु कौशलम, एक कला है, एक कुशलता है, कर्म करने की कुशलता है। हम सबके लिए वो एक संदेश है। हम तो रोज कर्म लेकर के खड़े हुए हैं रथ को दानों के बीच, और अर्जुन मुश्किल में पड़े हैं, कैसे लड़ूं ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई तो मैं सोचता था बहुत बाहरी होगी, पर ये तो लड़ाई अपने भीतर की है। अपनों से लड़ना है, अपने मुंह से लड़ना है। मुंह नहीं होता तो क्या दिक्कत थी लड़ने में? उस समय विषाद से घिर गए थे, लेकिन पूरा उपदेश शुरू हुआ और उपदेश के दौरान अंत में जाकर इसीलिए पूछना पड़ा श्री कृष्ण को कि अर्जुन गाय हुआ तुम्हारा मुंह कि नहीं? बोले हां भगवान। स्वधर्म याद आया कि नहीं आया भगवान? जब तक मोह था तब तक स्वधर्म भूला हुआ था। जिस दिन मोह हटा, मोह महामद पियो अनादि भूरी आपको भ्रमत भारी, शायद यहां कुछ लिखा हुआ है। इस मोह की वजह से विषाद उत्पन्न हुआ और वहां से शुरुआत हुई। उस मोह के अभाव पर जब स्वधर्म की याद आई तब जीत किसकी होती है? जीत तो जो मोह को जीत लेता है उसी की जीत होती है, और वही भगवान का प्रसाद है। इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? मैं तो सोचता हूं कि वहां से शुरू हुआ और अंत में प्रसाद योग तक बात गई कि हमने अपने को पा लिया, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है। और योग जो शब्द आता है बहुत आसान शब्द है भैया, योग कोई कठिन शब्द नहीं। योग कर्मसु कौशलम, एक कला है, एक कुशलता है, कर्म करने की कुशलता है। हम सबके लिए वो एक संदेश है। हम तो रोज कर्म करते हैं, तीन तरह के कर्म हैं, एक जो किए जाते हैं, एक जो हम अपने साथ बांध लेते हैं, एक जो हम बोधते हैं, क्रियमान है, संचित है और प्रारब्ध है। प्रारब्ध जो हमें आज वर्तमान में भोगने में आ रहा वो हमारा प्रारब्ध है, जो आज हम अर्जित कर रहे हैं वो हमारा संचित है, और जो आज हम करते चले जा रहे हैं वही क्रियमान है। गीता में इन्हीं तीन कर्मों की, या इनको ऐसा कह लीजिए कर्म विकर्म और अकर्म। विकर्म तो नियत कर्म है, वही स्वधर्म है, लेकिन कर्म को निरंतर विकर्म का ध्यान रख के अकर्म में बदलते जाना ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है। एक ही में सब समाये हुए हैं। जब हम अपने कर्म का निर्धारण अपनी बुद्धि अपने विवेक के द्वारा करते हैं लेकिन समर्पित होके करते हैं वही ज्ञान योग होता है, और जब हम अपने कर्म को कहते हैं कि हम तो नहीं जानते क्या करना है भगवान आप ही बताओ, ऐसा समर्पित करके और उन्हीं से पूछ करके और कर्म करते हैं वो भक्ति योग हो जाता है। भक्ति योग ज्ञान योग उसी कर्म योग में समाया हुआ है। कर्म करने की, लेकिन नियत कर्म करने की, पुण्य कर्म करने की, स्वधर्म की प्रेरणा गीता ने और हर धर्म ने दी है। धर्म हमें अपने स्वधर्म को भूलने की शिक्षा नहीं, उसे याद करने की शिक्षा देता है, हमारे मुंह को तोड़ता है। धर्म वही है जो कि हमें संसार का भान कराए और इस संसार से पार ले जाने के लिए रास्ता बताए, हमारे मोह को तोड़ दे। हुए कर्म को दो तरह से किया जा सकता है, वैसे तो अपन बहुत तरह से करते हैं, पर मैं सोचता हूं कि जो उपदेश हमें दिया गया है हमारे पूर्वाचार्यों ने, वो उपदेश कर्म को दो तरह से करने का है। पहली चीज तो कर्म को हम कर्तापने से मुक्त हो करके करें, अपना कर्तव्य मान करके करें। कभी किसी माँ ने कहीं किसी जगह ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि मैंने अपने बेटे की इतनी इतनी सेवा करी, कभी किसी हेडलाइन पर आपने पेपर में पढ़ा कि इस माँ ने अपने बेटे को इतना दूध पिलाया, इस माँ ने इतनी बार अपने बेटे की गंदगी साफ करी, इस माँ ने इतनी बार ऐसा करा और फिर बाद में बेटे को बहुत बड़ा करा। किसी माँ ने आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अपने पेपर में कभी एडवर्टाइज किया? नहीं किया। वो जैसे उसका स्वधर्म है, जैसे उसने वो कर्तव्य की तरह किया है, ऐसे ही तो हमें संसार के कर्मों को कर्तव्य मान करके करना है, कर्तृत्व के अहंकार से घृषित होकर के नहीं करना है। विनोबा जी को किसी ने बुलाया होगा, उनसे पूछा होगा कि आपके पास समय है क्या, हमने राम नाम जप करने का इतना इतना तय किया है, सो आप भी लिखो कि कितनी बार आप करोगे राम नाम का जप। तो उनने लिख के भेजा था कि राम नाम को गिनती से क्यों जोड़ रहे हो, क्या गिनती पूरी करना है कि राम का नाम लेना है? अगर गिनती पूरी करवानी हो तो फीड कर दो कंप्यूटर में, वो बहुत जल्दी कर लेगा, और अगर राम नाम करवाना हो जब तो फिर गिनती मत गिनवाओ, जितनी देर मेरा मन करेगा उतनी देर करूंगा। तो ये कर्म करने का ढंग है। हम आज जप तप अनुष्ठान सब करते हैं, संसार के कर्म भी करते हैं, लेकिन सबके साथ हमारी आसक्ति लगी हुई है। और कई बार तो हम ये विचार करते हैं कि अगर फल मिलेगा तो करेंगे, और अगर फल मिल जावे और करना न पड़े तो भी अच्छा है। ऐसा कर्म करने की प्रेरणा कहीं नहीं दी है। कर्म करने की प्रेरणा तो दी है, लेकिन ये ध्यान रख करके करने की कि कहीं उस कर्म में आसक्त ना हो जाएं, हमें वो कर्म मुक्त करे। अकर्म वही है जो कि करते हुए भी हम उसमें कर्तापने का भाव नहीं लाते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। कभी किसी सूरज ने आकर के, शायद सूरज ने कभी नहीं सोचा होगा कि अब जबकि मैं सुबह से जा रहा हूं, इतने लोग जाग जाना चाहिए और अपने काम पे लग जाना चाहिए और इतनी चिड़ियों को जाग करके और संदेश देना चाहिए, इतने कमल को खिल जाना चाहिए, ऐसा कभी कभी उसने मन में भाव नहीं किया कि मैं जाऊंगा और मैं करता हूं, मैं लोगों को जगाता हूं, मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं। नहीं, जैसे सूरज जैसे नदी ने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि मैं यहां से निकलती हूं इसलिए लोगों की प्यास बुझती है, कभी सूरज ने ये नहीं कहा। जैसे पक्षी सहज रूप से उड़ लेते हैं, जैसे कि छोटे से बेटे को मां की याद आना बहुत सहज होता है, ऐसे ही जिन क्षणों में हमें परमात्मा की याद आना सहज हो जाए, वो हमारा कर्म हमारे आत्म कल्याण के लिए है। जब ये एहसास होने लगे, जबकि सच बोलना इतना आसान हो जाए जैसे पक्षी का आकाश में उड़ना और सुबह सूरज का उगाना, जब पाप, तब फिर पाप बहुत मुश्किल होगा। सच बोलना इतना आसान हो, दान पुण्य करना इतना आसान हो जाए, इतना सहज हो जाए, तब कहते हैं कि वो स्वधर्म हो गया। कर्म में से आसक्ति निकल जाती है, कर्म में से कर्तृत्व निकल जाता है, तब वो अकर्म और विकर्म हो जाता है। वही हमें इस संसार से पार कर देता है। इतनी आसान सी चीज कही थी गीता में, लेकिन आज हम सब कर्म में इतने आसक्त हैं, इतने लिप्त हो गए हैं। और कर्म में लिप्त नहीं है, जो कर्म के फल में लिप्त होता है वो कर्म का मजा ही नहीं जानता कि कर्म का मजा हो क्या होता है। और जो व्यक्ति कर्म के फल में लिप्त नहीं होता है वो कहता है जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बुरा करता रहूं और अच्छा मांगता रहूं तो मेरी कभी भी फल की आपूर्ति नहीं होने वाली है। इसलिए तो लिखना पड़ा कि मां फलेषु कदाचन, तुम अपना अधिकार फल में मत जताना, सिर्फ कर्म करना, अनाशक्त होकर के कर्म करना बहुत कठिन है। फल की आकांक्षा छोड़ देना, कौन से वाले फल की आकांक्षा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा ही, तुम और अधिक फल की आकांक्षा क्यों कर रहे हो, वो तो मिलेगा ही। ऐसा कर्म आज वर्तमान में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। आज भी गीता अप टू डेट है, आउट ऑफ डेट नहीं होगी। वो तब होगी जब हम ये मान लें कि कोई लड़ाई लड़ी जाना है और बिल्कुल रथ बिल्कुल खड़ा ही हुआ है बीच में और धनुष बाण लिए अर्जुन खड़े हुए और श्री कृष्ण जी खड़े हुए। ये लड़ाई हमें अपने भीतर लड़नी है, अपने अपने और पराये के भेद से, अपनी आसक्तियों से, अपनी आसुरी शक्तियों से लड़नी है, अपनी देवी शक्तियों को प्रकट करने के लिए अपने भीतर लड़नी है। और बुलाना पड़ेगा किसी श्री कृष्ण को अपना सारथ करने के लिए। बुला पाएंगे हम, लेकिन बुला सकते हैं कब, जब अर्जुन की तरह अनुरागी होंगे तब। अर्जुन का अनुराग था इसलिए सारथ किया था श्री कृष्ण ने। हमारा अनुराग अगर होगा तो हमारे भीतर उनको स्वयं आकर के और हमारा मार्गदर्शन करना पड़ेगा, हमारा विवेक वे स्वयं जागृत कर देंगे। अगर हमारा अनुराग हो, अगर हम इस संसार से थोड़ा सा विषण तो हो जाएं, संसार की दिया हमको आंसने तो लगे कि हाँ सच्ची में है, नहीं झूठी झूठी में लगता है, यहां आकर के लगता कि हाउ संसार में दुख है, उतनक बाहर निकली सब सुख दिखाएंगे, दुनिया के जितने सुख हैं तहीं तो हैं, इंदौर में ही या कि मुंबई में होंगे, ज्यादा होंगे इससे ज्यादा, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ये उपदेश इसलिए है कि हम ठीक ठीक पहचान सकें कि हमारी अपनी वास्तविकता क्या है। हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करें? कर्म योगी बनकर के भी कर्म किया जा सकता है, और कर्म के भोगी बनकर के भी कर्म, और हम सब कर्म के भोगी, कर्म के कर्ता बनकर के कर्म के भोगता हो जाते हैं। जो कर्ता भी नहीं बनता है वो तो निमित्त मात्रम भव सव्य साची। अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, कर्ता तुम नहीं हो सकते। ये तो किसी ने ना कर्तित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति, ना कर्म फल संयोगस्तु स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं ना यहां लोगों का कर्ता हूं बनता हूं, कर्म सब करता हूं वो खुद कह रहे हैं, मैं यहां कर्ता नहीं बनता हूं, ना मैं किसी का कर्म बनता हूं, ना उनके फलों का संयोजन करता हूं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपना अपना स्वधर्म हर व्यक्ति के पास है, उसी रूप में वो प्रवर्त होता है। ऐसा उपदेश आज भी हमें प्रासंगिक है, बशर्ते कि हम अपने जीवन में लेना चाहें। एक बहुत अमीर आदमी था, और जीवन का जब उसका बहुत सारा भाग निकल गया, 60-70 वर्ष का हो गया, तो मालूम उसने क्या करना शुरू किया। वो सबरे गांव में चक्कर लगाता, और वो आम खा खा करके लोग गुटलियां फेंक देते थे, उसको वो उठा करके ले आता, धो धा करके अपने पास रख लेता। उसके लड़के परेशान, पूरा गांव परेशान कि भैया इतना बढ़िया प्यारा आदमी, तब धनवान आदमी, और इसको क्या जरूरत पड़ी हुई है। सुबह से निकल जाता है मॉर्निंग वॉक पर, और सब गुटलियां उठा उठा करके जूठी कहां कहां की किस किस की सब रखता चला जाता है। अब लगता है कि 60 के बाद जो है थोड़ी बुद्धि गड़बड़ा गई। हाँ, कोई अगर ठीक ठीक करने लगे तो लगता यही है कि बुद्धि गड़बड़ा गई। तो अब क्या कहें, समझाया बुझाया, लेकिन वो मुस्कुरा देता था बच्चों के सामने भी। तो एक दिन आयु पूरी हो गई, वो चला गया। 2-4-5 साल के बाद जब गांव के लोगों ने देखा कि गांव के चारों तरफ आम के बगीचे खड़े हुए हैं, आम के पेड़ खड़े हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पेड़ खड़े हैं, तब उनके समझ में आई कि ये तो गुठलियां उठा उठा करके गांव के आसपास चारों तरफ उसे खुशहाली देने के लिए। उनकी आकांक्षा उसके, वो पूछते थे कि काय को उठाते, तो वो कहता काय के वक्त, काय के लिए बताएं कि काय के लिए उठाते हैं, हमें मजा आता, बस हम करते हैं क्योंकि हमें आनंद आ रहा है उसमें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल के दिन आपको पाप नहीं लगे तो आप कहो कि हमें आनंद आता है इसलिए हम पाप कर रहे हैं। हम इसलिए पहले कह चुके कि नियत कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म को सहज रूप से करना। ऐसा अगर हम अपने जीवन में शुरू करते हैं तो पहली गीता की बात कि अनाशक्त होकर के फल की आकांक्षा के बिना, या कि कर्तृत्व भाव से मुक्त होकर के कर्म करना, और कर्म को पूरी हार्दिकता से करना। विकर्म की एक परिभाषा यह भी है कि जब हम बाह्य कर्मों को पूरे चित्त से करते हैं तब वह विकर्म होता है। हार्दिकता होनी चाहिए। हार्दिकता कैसी होती है? बहन हो और छोटा सा भैया हो तो गोदी में लिए फिरती रहती सुबह से शाम तक, क्या मजा आ रहा है, बस आ रहा है, उसको बोझ नहीं मालूम पड़ रहा है। फेरी वाला तो सुबह से शाम तक जो है ढेर सारा कंधे पर बोझा लादे हैं और गाते हुए चला जाता, आवाज देता कि ले लो जिसको जो लेना हो, मैं आया हूं। फेरी वाला, उसको बोझ नहीं मालूम पड़ रहा है। जब हमें कर्मों को ढूंढना ना पड़े, जब कर्मों में हमारा मन आनंदित हो, हमारी उस कर्म के पीछे हार्दिकता हो, हम ये मान करके करें कि ये हमारा कर्तव्य है, जो हमारी भक्ति हो, पूरे समर्पण के साथ जब वो कर्म किया जा रहा हो, तब वो कर्म सार्थक होता है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान ये तो सब मनोहर जी ने लिखा कि 16 सावन और अरीठा हैं जी, मन पानी के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। और पानी क्या है? पानी हार्दिकता है, पानी भक्ति है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं पूरी भगवत भक्ति के साथ अगर करते हैं, अगर हम भगवान के प्रति समर्पित होकर के नियत कर्म करते हैं, तब वो हमारा कर्म सार्थक होता है। वरना चाहे संसार के काम करो और चाहे यहां आकर के मंदिर में जप तप अनुष्ठान करो, अगर उनमें से भक्ति गायब है, अगर उनमें से भावना गायब है, तब तो फिर वे कर्म तुम्हें संसार को बढ़ाने वाले ही कर्म होंगे, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भावनाएं कैसी होती भैया? कागज का नोट है और उस पर मोहर लगी, सो चल रहा है, अब मोहर नहीं हो गए तो कागज का टुकड़ा है, बस ऐसा ही है। अगर किसी भी कर्म पर भगवत भक्ति का ठप्पा लगा है, मोहर लगी है, तो वो कर्म संसार से पार करने वाला है, वरना सारे कर्म संसार को बढ़ाने वाले कर्म है, स्वपन रोज कर रहे हैं। ऐसी ये हार्दिकता है, ऐसी ये भगवत भक्ति है। शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे मन को आनंद देती है, इसलिए लिखते हैं। और कोई ने हमें रामचंद्र जी का कछु हिसाब चुकता है करने की, उनके हिसाब चुकता कर भी लिख रहे हैं, किसी दूसरे को समझाने के लिए। शांत सुखाए, मेरे अपने आनंद के लिए मैं इस कर्म को करना हूं, और निमित्त मात्र होकर के भगवान को समर्पित होकर के मैं कर्म कर रहा हूं। ये कर्म करने का हमें इस तरह का रास्ता दिया, ऐसे हम इससे संदेश लेकर के अपने जीवन को परिष्कृत करें। मैं एक बहुत छोटी सी घटना और आपसे कहूं और अपनी बात यहीं पर विराम लेता हूं। अब तो हमें करना है, शुरुआत करनी है। वैसे हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस ढंग से करना है, थोड़ा थोड़ा अनाशक्त होकर के कर्म करना है। नियत कर्म को पहचानना है कि क्या हम यहां क्यों आए, हमारा स्वधर्म क्या है। क्या स्वधर्म ये है कि देह को हम अविनश्वर मान करके इसके पीछे ही भागते रहें, इसकी सुख सुविधाएं जुटाते रहें, या कि कोई भीतर बैठा हुआ जो अविनश्वर आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए कोई उपाय करें। जो आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय करता है, जो उसके लिए कर्म करता है, वो सब कर्म उसका सार्थक है। और इस नश्वर देह के लिए जो दुनिया भर के प्रपंच जुटाता रहता है, वो तो अपना संसार ही बढ़ाता। इतना मोटा मोटा सा सीधा सा है ये संदेश गीता का है। हम कर्म को हार्दिकता पूर्वक करें, नियत कर्म को करें, लेकिन हार्दिकता पूर्वक करें, पूरी भक्ति के साथ करें। एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें कि 100-200 पुजारी थे, सारा उसको मैनेज करते थे वो पुजारी जी। तो एक दिन एक पुजारी जी, जो बड़े पुजारी जी थे, उनको पुजारी शब्द बहुत बड़ा शब्द है, अपन ने उसको बहुत छोटे अर्थों में ले लिया है, पूजा करने वाला जिसे 24 घंटे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं आता, एक ही चीज आती है। अपन तो पार्ट टाइम पुजारी हैं, जब तक पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो प्रपंच करते हैं, पुजारी वुजारी अपन थोड़ी कहना है। जिसको सिर्फ पूजा करनी आती है और कुछ आते ही नहीं है, जो जो करता है वो सब पूजा मान के करता है, भगवान की पूजा कर रहा हूं इसलिए जो कुछ भी कर रहा है उसको। तो 100 पुजारी थे, एक पुजारी जी को स्वप्न आया कि आज की रात भगवान पधारेंगे। बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ। एक तो बात ये स्वप्न है। अब स्वप्न को अगर स्वप्न माने तो उस पर कोई गौर करने की आवश्यकता नहीं, और अगर मान लो भाई तब सच्चा निकल गया तो फजीती हो जाएगी, क्योंकि मंदिर की तैयारी नहीं करेंगे और भगवान आ गए तो क्या करेंगे। फिर भी सच्ची में आए थे तो विश्वास नहीं जमता, उसको भी थोड़ा सा भय लगा कि और लोगों से कहेंगे तो कहीं लोग हमें पागल लगे थे। फिर भी हिम्मत करके कि भाई अगर सच्ची में आई गए और तैयारी नहीं करी तो क्या होगा। तो सब लोगों से धीरे से कहा कि देखो बहुत अंतरंग की बात है, स्वप्न में ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा देखो रिस्क मत लो, तैयारी तो अपन कर ही लो। आ गए भाई कभी, अब देखना आप, अपन सब लोगों ने निर्णय किया बैठ कर कि भाई रिस्क लेने का इसमें बिल्कुल अच्छा, लेकिन डिक्लेयर नहीं करें, किसी को बताएंगे नहीं, नहीं आए तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा इनका स्वप्न की बात मान ली। इतना विश्वास नहीं हो पाता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है उसका किसी पे, भगवान पे तो बहुत दूर की बात है भैया, अपने पे ही विश्वास नहीं है तो भगवान पे क्या विश्वास हो। सो जैसे तैसे करके मंदिर की साफ सफाई कर ली और जुटे रहे दिन भर, मंदिर तैयार होता रहा लेकिन मन तैयार नहीं था कि भगवान आएंगे कि नहीं। ऐसे ही तो हम आज तक कर्म करते हैं, जिन कर्मों को हमने नियत कर्म भी माना है, करने योग माना है, स्वधर्म माना है, उसको भी हमने कैसे किया है, बस ऐसे ही किया है। इसलिए तो भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ। भगवत्ता हमारे भीतर बार बार दस्तक देती है, इसके बाद भी हमें उसका एहसास नहीं होता। कोई भगवान रोज हमारे भीतर हमें आवाज देता है लेकिन फिर भी हम बेखबर हैं कि क्या पता, खैर ठीक कर लो, थोड़ी बहुत झाड़ पहुंच कर लो, बाकी आते वाते नहीं है। और ऐसे ही जो है मंदिर तैयार हो गया, मन तैयार नहीं था। शाम हो गई, शाम को सबने थोड़ा जो भी खाना पीना था वो करके और इंतजार शुरू किया। अब इंतजार भी कब तक करें, तो धीरे धीरे नींद आने लगी तो सब लोग सो गए, सब लोग सो गए। लेकिन ठीक 12 बजे एक पुजारी जी को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे रथ आकर के मंदिर के यहां रुका हो। उन्होंने जगाया लोगों की कि ऐसा लगता है कि जैसे रथ आ गया है, भगवान आ गए। उन्होंने कहा देखो नाहक खराब मत करो, बड़ी मुश्किल में तो नींद आई है, ऐसे नहीं आते, वो सब स्वप्न की बात है, और कुछ हवा आई होगी, हवा में तुम्हें ऐसा संदेह हो रहा। पूरी तैयारी कर लेने के बाद भी मन तैयार ना हो तो भगवान नहीं आते। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितने कर्म कर लो, और सोते रहे। कहते हैं कि कहानी है, अब कहानी में तो सब हो सकता। कहते हैं कि दस्तक हुई दरवाजे पर कि खोलो, मैं आ गया। और वो पुजारी कह रहा है जो जाग रहा है कि खोल दूं क्या दरवाजा, वो कहते सो जाओ चुपचाप, कोई नहीं आता ऐसे, और भगवान ऐसे नहीं आता। और जब सुबह सब उठे और उठ करके बाहर देखा तो वाकई में रथ के आने और वापस जाने के निशान बने हुए थे। तब माथा पीट लिया कि हम तो चूक गए, भगवान आए हमारे द्वार पर और हम पता नहीं किस कर्म में व्यस्त रहे। हमने ऐसा कोई कर्म अपने जीवन में नहीं किया, अपने मन से नहीं किया, असल में हार्दिकता से नहीं किया, पूरी भक्ति भावना से नहीं किया। इसलिए हम हमेशा कर्म करते हुए भी और श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कर्म श्रेष्ठ तभी होता है जब उसके साथ हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, सब कुछ उसके साथ जुड़ा हो, तब वो कर्म हमारे जीवन को परिष्कृत करता है, विशुद्ध करता है। ये हर धर्म का उपदेश है, गीता का भी यही उपदेश है। हम आज जबकि यहाँ एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ बैठ पाए, आदमी की हैसियत से भैया और किसी हैसियत से नहीं। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के भीतर जो भगवान है को भगवान हर मनुष्य चाहे तो अपने भीतर उसके दर्शन कर सकता, उसे प्रकट कर सकता, उसका साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर अच्छा लगता है मुझे, जबकि हम सब एक साथ बैठ करके उसी अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करते हैं, अपने स्वधर्म का थोड़ा सा ख्याल करते हैं, तब हमारे जीवन के वेषण सार्थक होते हैं। आज हम ऐसी भावना भाते हैं कि जो उपदेश हमें मिले हैं आज कि हमारे जीवन में शाश्वतता आत्मा की है, नश्वरता इस देह की है, हमारा स्वधर्म है कि हम आत्म प्राप्ति करें, देह के नश्वर सुख के पीछे अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद न करें। इसी भावना के साथ आज अपन इस परिसर में भगवान का नाम लेंगे, मंत्र नमोकार, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी व्यक्ति को प्रणाम उसमें नहीं किया गया, सिर्फ जिन्होंने अपने कर्मों को जीत कर, अपनी वासनाओं को जीत कर अरहंत का पद पाया है, जिन्होंने सिद्धत्व दशा को प्राप्त किया है, जो स्वयं आचरण करते हैं, सबको आचरण की शिक्षा देते हैं, ऐसे आचारी भगवंतों को जो स्वयं अपने आत्मा को पढ़ते हैं, दूसरों को आत्मा के पढ़ने की शिक्षा देते हैं, ऐसे उपाध्यायों को और लोक में समस्त आत्म साधना में जुटे हुए साधकों को, साधुओं को उसमें प्रणाम किया है, इन्हीं की शरण है, यही मंगल है, यही लोक में उत्तम है, ऐसे इस पंच नमस्कार को अपन आज इस भावना के साथ कि हमें अपना स्वधर्म ख्याल आए और हम अपने स्वधर्म को हार्दिक होकर, समर्पित होकर, पूरी भगवत भक्ति के साथ करें, इस भावना के साथ मेरे साथ नमस्कार।
Thank you. आचार